सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दित्तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुड मृणमोऽसुत केवलीभणिदम्।
ये कुंद कुंद आचार्य भगवान का समय सार जो है, उस समय सार के आज हम कर्ता कर्म अधिकार को देखने जा रहे हैं। और ये जो प्रवचन रत्नाकर जो स्वामी जी के प्रवचन है, उसके चौथे भाग की शुरुआत हो रही है। यहाँ लिखते हैं कि ओम परमात्मने नमः श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री समय सार ऊपर पूज्य सद्गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ना प्रवचनों श्रीमद् अमृतचंद्र सूरी कृता आत्मख्याति ही। यानी यहाँ मूल शास्त्र कुंदकुंद आचार्य भगवान ने लिखा है, वह उसके साथ साथ आचार्य अमृत जी की टीका भी है जो आत्मख्याति नाम से प्रसिद्ध है। अब यह हम कर्ता कर्म अधिकार को देखेंगे। यहाँ लिखते हैं अथ जीवा जीवा वेव कर्तुकर्म वेशेन प्रविशतः। यहाँ पर ये समझा रहे हैं अभी अथ यानी अभी जीव और अजीव ये कर्ता और कर्म का वेश धारण करके रंगभूमि पर प्रवेश कर रहे हैं। पहले वो क्या थे, जीव और अजीव का रूप लेके आए थे, अभी कर्ता और कर्म दोनों मिलके एक ही रूप लेके आए कर्ता कर्म का। वो ऐसा प्रवेश करते हैं, ऐसा लिखते हैं। अभी ये 40 नंबर का जो कलश है वो मंदाक्रांत पढ़ेंगे।
एकः कर्ता चिदहमहमे कर्म को पादयोमि इत्यज्ञानां शमयदभिता कर्तुकर्म प्रवृत्तिं ज्ञानज्योति स्फुरति परमो दातमत्यन्तधीरं साक्षात् कुर्वन् निरुपधि पृथक् द्रव्यनिर्भासि विश्वम्।
ये तो अमृतचंद्राचार्य ने ये जो कलश लिखा है उसका अन्वयार्थ यहाँ नीचे है, वो पढ़ेंगे। फिर बाद में ये कर्ता कर्म विभावन यानी जो जयचंद जी छाबड़ा ने जो कुछ भावार्थ लिखा है उसका यहाँ संस्कृत में ट्रांसलेशन करके दिया है, तो वो पहला पढ़ लेते हैं हम, फिर बाद में अन्वयार्थ को जाएंगे। कर्ता कर्म विभावने मेटी ज्ञानमय होय कर्म नाशी शिवमा वसे नमु तेह मद खोय। प्रथम टीकाकार कहे छे के हवे जीव अजीवज एक कर्ता कर्मना वेशे प्रवेश करे छे। जेम बे पुरुषो माहो माहे कोई एक स्वांग करी नृत्यना अखाड़ा मा प्रवेश करे तेम जीव अजीव बनने एक कर्ता कर्मनो स्वांग करी प्रवेश करे छे। एम आई टीकाकारे अलंकार कर्यो छे। हवे प्रथम ते स्वांग ने ज्ञान यथार्थ जानी ले छे ते ज्ञान ना महिमानु काव्य कहे छे। अभी वो दोनों कर्ता कर्म का वेश धारण करके आए हैं, लेकिन ये ज्ञान कैसा ज्ञान है कि सम्यक ज्ञान है और उसने उनके यथार्थ स्वरूप को जाना है, तो वो जो ज्ञान है उस ज्ञान की यहाँ महिमा यानी उनका यहाँ गुणगान कर रहे हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं। ये तो श्लोक हमने पढ़ लिया। अभी श्लोकार्थ कहते हैं, इह आलोकमा अहम चित हूँ चैतन्य स्वरूप आत्मा, तो एक करता छू अने अमी कोपा दया आ क्रोधादि भावो मारा मे कर्म मारा कर्म छे इति अज्ञानाम कर्तु कर्म प्रवृत्तिम एवी अज्ञानियों ने जे कर्ता कर्मनी प्रवृत्ति छे तेने अभितः शमयतम बधी तरफती शमावती एटले मटाड़ती ज्ञान ज्योति ही ज्ञान ज्योति स्फुरति एटले स्फुरायमान थाय छे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, देखो हम गुजराती में सिर्फ पढ़ेंगे तो आपको विशेष रूप से बात ख्याल में आएगी। आलोकमा हूँ चैतन्य स्वरूप आत्मा तो एक करता छू अने आ क्रोधादि भावो मारा कर्म छे एवी अज्ञानियों ने जे कर्ता कर्मनी प्रवृत्ति छे तेने बधी तरफती शमावती एटले मटाड़ती ज्ञान ज्योति स्फुरायमान थाय छे। ये क्या कह रहे हैं, देखो मैं करता हूँ और ये राग जो भाव है क्रोधादि जो भाव है या ये जो कषाय परिणाम है वह मेरे कर्म है ऐसा अज्ञानी जीव मानता है और वह अज्ञान को नष्ट करने वाला ज्ञान प्रकट होता है स्फुरायमान होता है। तो ज्ञान कैसा है वो बात बताएंगे। केवी छेते ज्ञान ज्योति तो परम उदात्तम जे परम उदात्त छे अर्थात कोई ने आधीन नथी यानी ज्ञान होने में अन्य किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान तो बिल्कुल स्वतंत्र है स्वाधीन है, पर के कारण से ज्ञान होता हो ऐसी बात ही नहीं है ऐसा कहते हैं। कैसे है उन्होंने शब्द कौन सा बोला है, परम उदात्तम एटले कोई ने आधीन नथी, अत्यंत धीरम एटले जे अत्यंत धीर छे अर्थात कोई प्रकारे आकुलता रूप नथी। ज्ञान आकुलता रूप हो जाए ऐसा होगा ही नहीं। और क्या कह रहे, अने निरुपधि पृथक द्रव्य निर्भासी परनी सहाय विना जुदा जुदा द्रव्यों ने प्रकाश वानो एटले जानवानो जेनो स्वभाव होवाथी विश्वम साक्षात कुर्वत जे समस्त लोकालोक ने साक्षात करे छे एटले प्रत्यक्ष जाने छे। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये ज्ञान है वह ज्ञान जानता है कि मैं जुदा हूँ मैं चैतन्य स्वरूप हूँ और यह जो मेरे में उठने वाले जो राग परिणाम है वह मैं नहीं हूँ वह मेरे भी नहीं है। ये पर्याय में जो उत्पन्न हो रहे हैं वह उस समय की पर्याय की योग्यता के कारण होने वाले हो फिर भी मैं उसका कर्ता नहीं हूँ क्योंकि मेरा वो स्वभाव नहीं है, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। और ऐसी ज्ञान ज्योति जो हमारे में प्रकट होती है तो कहते ये पहली जो अज्ञानी की मान्यता यानी मेरी ही मान्यता थी वह नष्ट हो गई अभी। और वो ज्ञान कैसा है तो कहते जो परम उदात्त है अत्यंत धीर है और पर की सहाय बिना सबको जाने ऐसा उसका स्वभाव है। भावार्थ आवो ज्ञान स्वरूप आत्मा छे ते परद्रव्य तथा परभावना कर्तापणा रूप अज्ञान ने दूर करीने पोते प्रकट प्रकाशमान थाय छे। देखो यहाँ हमेशा ये बात लेना, ये कर्ता कर्म अधिकार में परद्रव्य का कर्ता की बात करीब करीब नहीं की है। यहाँ तो जो शुभ भाव है या जो कोई क्रोधादि जो भाव है इन भावों का मैं करता नहीं हूँ इस बात को विशेष रूप से बल दिया है क्योंकि ये जीव तो अभी बार बार सुनने से ये शरीर रूप मैं नहीं हूं, यहां तक तो वो एक्सेप्ट करने लगा है, कम से कम सुनने के लिए तो राजी है कि शरीर मैं नहीं हूं, ये पौद्गलिक शरीर जो है वह पुद्गल है और मैं तो जीव हूं। लेकिन ये पर्याय में जो राग द्वेष के यानी शुभ या अशुभ परिणाम हो रहे हैं उससे भी मैं भिन्न नहीं हूं, ये अभी उसमें थोड़ी सी मलिनता कहो या किलमिश कहो या खोटी मान्यता कहो अभी भी मौजूद है। इसलिए ये कर्ता कर्म अधिकार लिखने का किंदकुंद आचार्य ने सोचा होगा कि ये जीव मैं राग नहीं कर सकता, इस बात को मानने को तैयार नहीं है, इसलिए उसको ये बात समझाई। देखो प्रभावेन, हमने पहले ऐसा ही मान रखा था ना, कैसा कि नहीं नहीं नहीं, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तो हमें शुभ भाव तो करना चाहिए कि नहीं। अभी ये बात जो हमने उस समय आपको उत्तर दिया था कि मैं शुभ भाव कर ही नहीं सकता हूं क्योंकि मेरे स्वभाव में राग द्वेष मैं करूं ऐसा कोई गुण ही नहीं है कि जिसके कारण ये राग रूप परिणमन चालू ही रहे। और ये जो राग जो उत्पन्न हो रहा है वो चारित्र गुण की विभाव पर्याय है और विभाव रूप परिणम ना ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये बात सारी इसमें आने वाली है। अभी यही बात को क्या कह रहे हैं कि राग से मैं भिन्न हूं ये कौन जानेगा, तो कहते कि ज्ञान ज्योति, यानी जो सम्यक ज्ञान है वही क्या कह रहे हैं कि ये राग द्वेष आदि जो परिणाम हो रहे हैं, कषाय भाव जो हो रहे हैं, उनसे मैं भिन्न हूं, ये बात यहां बताई जा रही है। ख्याल में अभी देखो इधर ऐसा भी कहा है कि ये मिथ्यात्वी जीव होता है, वह मिथ्यात्वी जीव चार प्रकार से अपनी भावनाएं रखता है कि पुद्गल वह मैं हूं, या तो पुद्गल मेरे हैं, मैं पुद्गल का कर्ता हूं और मैं पुद्गल का भोक्ता हूं। अभी यहां पर तो यहां पुद्गल में तो 50 नंबर की गाथा से 55 नंबर की गाथा तक तो पुद्गल में हमने किसको किसको रखा था, याद है किसको? हाँ सब, हाँ 50 से 55 तक, हाँ रागादि और वर्णादि। तो उसमें वर्णादि और रागादि में तीन हमने भेद देखे थे, आप याद है आपको? हाँ कोई बात नहीं, आप तो कभी कभी आती है मैं समझता हूँ। बेन आपको याद है? हाँ रंग राग और भेद, ये गुणस्थान मार्गनास्थान आदि जो बात ली थी ना बंधस्थान, वो सारे भेदों में ही डाला। और राग में तो हाँ क्रोधमान मायलो वगैरह सब लिया। अब ये जो वर्णादि जो है ना उसमें सब वो हाँ मतलब पुद्गल की जो कुछ परिणति है उनको लिया। तो ये तीनों जो है उनमें से तो ये वर्ण की बात तो हटा दी, अभी राग वाली जो है इस राग में भी राग रूप मैं हूं ये बात तो पहले निकल गई समझ लो जीव जीव अधिकार में। यहां पर का मैं करता हूं, पर का मैं भोगता हूं, इस मान्यता का निषेध करने के लिए ये कर्ता कर्म अधिकार लिखा गया है। हाँ अभी यहां पर क्या समझाते हैं, मूल बात तो ये शरीर से मैं भिन्न हूं वाली बात तो अभी यहां गौण की है। यहां तो राग का मैं करता नहीं हूं, राग का मैं भोगता नहीं हूं, राग से मैं जुदा हूं। ये देखो समय सार में स्वभाव की अपेक्षा से ही कथन है, जिसको हमने कहा दृष्टि प्रधान ग्रंथ है, यानी यहां श्रद्धा में मेरा स्वरूप कैसा है इस बात को यहां हमें समझाना चाहते हैं कि मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसी बात कर चालू कर दिया उन्होंने। तो अब यहां पर ये हमने देख लिया, तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कहां तक? हाँ जी हाँ,
चार नंबर पृष्ठ पर,
चौथे नंबर के पृष्ठ पर आइए आप। चार यहां लिखते हैं, देखिए लियो हवे कर्ता कर्मनो अधिकार आवे छे, मिल गया आ समय सार। तो ભરત ક્ષેત્રનું ભગવાન છે, આહા હા શું અદ્ભુત એની રચના છે, અલૌકિક ગાથાઓ અને અલૌકિક ટીકા છે, દેવાધિદેવ અરહંત દેવની સાક્ષાત દિવ્ય ધ્વનિનો સાર લઈને શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય દેવે આ સમયસારની રચના કરી છે. અહો સમયસાર ભાવો બ્રહ્માંડના ભર્યા, એસા કોણ બોલતા હૈ રોજ આપ બોલતે તો એ ભાવો બ્રહ્માંડના ભર્યા. દેખો યહાં બાત હૈ, સ્વામીજી ભી યાદ કરતે ઓર આપકો લોગોં કો બુલાને કે લિયે ચુપ બિઠાને કે લિયે સમયસાર કી સ્તુતિ બોલની પડતી હૈ. હા ક્યું યે ફાઇનલ વોર્નિંગ દેતે ના, જૈસા સ્ટેશન પે ગાડી આની વાલી હો, પહેલે સ્ટેશન સે છૂટી હો તો યહાં બેલ બજતી હૈ, તો અભી ભાઈ તુમ્હારા જો કુછ કામકાજ હૈ પહેલે નિપટા લો ઓર યહાં આ જાઓ, યે બતાને કે લિયે હમ બોલતે ક્યા ભાઈ? યે સમયસાર કી સ્તુતિ ઇસલિયે બોલના હૈ કે વહ પડકર હમારે જો ભાવ હૈ વો પ્રશમ હો જાય, શાંત હો જાય, કે યહાં જો આગે બાત ચલને વાલી હૈ વો હમારે ખ્યાલ મેં આ જાય. પહેલા અધિકારમાં આચાર્ય દેવશ્રીએ જીવ અજીવ દ્રવ્યની ભિન્નતાની વાત કરી. જીવ અને અજીવ દ્રવ્યો સૌ સ્વતંત્ર અને ભિન્ન છે એમ સિદ્ધ કર્યું. હવે જીવ અને અજીવ દ્રવ્યોની પર્યાયમાં કર્તા કર્મ સંબંધી જે ભૂલ થાય છે તેની આ અધિકારમાં વાત છે. અભી યહાં જીવ ઓર અજીવ મેં, અજીવ મેં તો રાગ કોઈ લે હો ભાઈ? હા જી, અધિકતા મતલબ ક્યાં કહેતા હું મેં, વિશેષતા તો વહાં નો કર્મ કી બાત લી હૈ, યહાં વિશેષ રૂપ સે ભાવ કર્મ કી બાત લી હૈ. દેખ લીજે જૈસા જૈસા હમ આગે બઢેંગે.
હા નહીં, જીવ અજીવ મેં દોનો ભી લીએ ના, મેં વો કર્મ નો કર્મ મેં નહીં હું, જબ તક ઉસમે મેપના કી બુદ્ધિ હૈ તબ તક એ જીવ પ્રતિ બુદ્ધિ વગેરે વો ભી બાતે પહેલે ઉઠાઈ, વો લાસ્ટ મેં 50 સે લેકર વો વર્ણાદિ રાગાદિ કી ભાવ લી થી, વહાં ભી ઉસકો અજીવ મેં ડાલા થા. પરંતુ જીવ અજીવ અધિકાર, અધિકાર કા નામ હી જીવ ઓર અજીવ હૈ, ઉસમે જીવ કી ઓર અજીવ કી ભિન્નતા જબ પહેચાની ગઈ જ્ઞાન કે દ્વારા વો તો નિકલ ગયે, પરંતુ અભી ફિર દૂસરા રૂપ લેકે આયે હૈ કર્તા કર્મ કે રૂપ મેં, એને માન્યતા અભી વૈસી ચલ રહી હૈ ઉસકી કર્તા કર્મ કે રૂપ મેં, વો જો ઉસકી બુદ્ધિ હૈ કે મેં કરતા હું યે રાગાદિ મેરા કર્મ હૈ, વો બુદ્ધિ છુડાને કે લિયે ભી ઇસ અધિકાર મેં સારા વિષય લે લેંગે. વહા દ્રવ્યો કી બાત થી, અબ યહાં પર્યાયો કી બાત ચલ રહી. યે લિખા ના યહાં ઉપર કી લાઇન મેં, દેખો પહેલે અધિકાર મેં જીવ અજીવ દ્રવ્યો કે ભિન્નતા કી બાત કી, ઓર અભી પર્યાયો કી ભિન્નતા કી બાત ચલેગી. ક્યુંકી કરતા કર્મ, કર્મ તો પર્યાય હોગા ના, કર્મ એને કાર્ય. યહાં તો દ્રવ્ય કર્મ કી બાત નહીં ઉઠાએંગે, યે રાગાદિ અપને પર્યાય મેં હોને વાલે જો હૈ ઉસકી બાત, ઉસકો અજીવ કરકે ભિન્ન ઉસકી ભિન્નતા બતાએંગે અભી આગે ચલકર.
યહાં કરતા કર્મ યાને કરતા યાને કરને વાલા, કર્મ યાને જો ક્રિયા ઉસસે હો રહી હૈ વહ, યે રાગ દ્વેષ કે પરિણામ જો ઉત્પન્ન હો રહે ઉસકા કરતા મેં હું, યે માન્યતા કો હટાને વાલે. દેખો આ અધિકારમાં હા વો હો ગયા, અભી નીચે સે ઉસી પેરેગ્રાફ મેં નીચે ભાઈ લિખા હૈ ના ઉદાહરણ સે દૂસરે લાઇન મેં, પર્યાયમાં જે ભૂલ છે તે સંસાર છે અને તે ભૂલ મટતા ભૂલનો અભાવ થતા મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે આ વાત છે. હવે પ્રથમ પંડિત શ્રી જયચંદજી માંગળિકનું પદ કહે છે, કરતા કર્મ વિભાવને મેટી જ્ઞાનમય હોય, કર્મનાશી શિવમાં વસે નમુહ તેહ મદ ખોય. ક્યાં કહે રે? દેખો કરતા એટલે થનારો, કરતા કિસકો કહેના? સ્વતંત્રપણે કરે તે કરતા, એને દૂસરે કિસી કે સહાય બિના સ્વયં જો ઉસરૂપ પરિણમે સ્વતંત્રપણે કરે તે કરતા, અને કરતાનું ઇષ્ટ એટલે જે કાર્ય છે તે કર્મ, જ્ઞાનીનું ઇષ્ટ જ્ઞાન છે અને અજ્ઞાનીનું રાગ દ્વેષ. યે તો બહુ સ્થૂલ કથન દિયા હો, વાસ્તવ મેં અજ્ઞાની ભી રાગ દ્વેષ નહીં કરતા હૈ, તો કર નહીં સકતા લેકિન માનતા હૈ ના. અહીં કહે છે કે આત્મા કરતા અને રાગ દ્વેષાદિ વિકાર એનું કર્મ એ વિભાવ એટલે સ્વભાવથી વિરુદ્ધ ભાવ છે, અજ્ઞાન છે. આહાહા, હું કરતા અને પર્યાયમાં જે રાગ દ્વેષાદી વિકાર થાય તે વેળા જે જ્ઞાનાવરણાદી કર્મ બંધાય તે મારું કર્મ એ અજ્ઞાન છે. દેખો યહાં દો બાતોં કી બાત ઉઠા, દો ચીજોં કી બાત ઉઠાઈ હૈ. પહેલે તો યે માનતા યે રાગ દ્વેષ મેં કર રહા હું, હા, યાને યે વિભાવ ભાવ મેં કર રહા હું અને તેનાથી કર્મ બાંધું છું, યાને કર્મ જો પરદ્રવ્ય હૈ ઉસકા ભી કાર્ય મેં હી કર રહા હું. ખ્યાલ મેં યે રાગ દ્વેષ તો કરે તો વો તો વિભાવ હૈ ઉસકો ભી સ્વયં કા સ્વયં કો કરતા માન રહે વો તો બાત ઠીક. આગે તો યે સમજા રહે હૈં કે એનાથી હું કર્મ બાંધું છું, યાને કર્મ કા બાંધના છોડના યે ભી મેરા હી કાર્ય હૈ એસા વો માનતા હૈ. હાલાંકિ દોનો કે પરિણમન એક સાથ હોતે હૈં ઓર એક ક્ષેત્રાવગાહ સંબંધ હોને કે કારણ સે ઉસ જીવને ઉસ કર્મ કો બાંધા એસા કહેને મેં આતા હૈ. તો કહેના કોઈ દોષ નહીં હૈ, અગર વૈસા હી માને તો ગડબડી હૈ, મિથ્યાત્વ કા દોષ આતા હૈ. ક્યું? પ્રત્યેક દ્રવ્ય સ્વતંત્ર હૈ ઓર એક દ્રવ્ય દૂસરે દ્રવ્ય કા કોઈ પરિણમન કરે યા ઉસકો પરિણમાવે એસા વસ્તુ સ્વરૂપ હી નહીં હૈ. ઓર યહ જીવ માનતા હૈ ઓર યે પર્યાય કી ભૂલ નિકાલને કે લિયે કર્તા કર્મ અધિકાર કી યહાં હમે બાત સીખની હૈ. શું કહ્યું? જો યે ફોર્થ લાઇન મેં હું કરતા અને પર્યાયમાં જે રાગ દ્વેષાદી વિકાર થાય કે તે વેળા જે જ્ઞાનાવરણાદી કર્મ બંધાય તે મારું કર્મ એસી જો માન્યતા હૈ એ અજ્ઞાન. માન્યતા ને એસા જો જ્ઞાન હૈ વહ અજ્ઞાન હૈ. આવા અજ્ઞાનને દૂર કરીને જે જ્ઞાન ભાવે પરિણમે તે રાગ દ્વેષનો કરતા મટીને જ્ઞાતા થાય છે. અહીં પર્યાયમાં રાગાદી ભાવ છે તેથી પરમાણુઓ જ્ઞાનાવરણાદી કર્મ પણ પરિણમે છે ને, યાને યહાં જીવ રાગ કરતા હૈ એટલે વહા કર્મ ભી ઉસરૂપ પરિણમિત હોતે હૈ ના, એસા પૂછ રહે. એમ નથી ભાઈ, એ કર્મયોગ્ય પરમાણુઓની કર્મ ભાવે પરિણમવાની જે તે સમય યોગ્યતા અને જન્મક્ષણ છે તેથી સ્વયં જ્ઞાનાવરણાદી કર્મ ભાવે પરિણમે છે અને ત્યારે રાગાદી ભાવ થાય છે તે એમાં નિમિત્ત છે. યહાં મૂળ વાત તો યે હૈ કે નિમિત્ત કભી કાર્ય મેં કુછ નહીં કરતા હૈ. દૂસરી વાત યે હૈ કે અભી માન લે કે 10 નંબર કી પર્યાય મેં જીવને રાગ પરિણામ કિયે ઓર 11 નંબર કી પર્યાય મેં વહાં કર્મ કર્મ રૂપ સે હુએ, એસા નહીં હૈ કે વહ ભી 10 નંબર કી જ પર્યાય કા જો કાલ હૈ ઉસી કાલ મેં વો કર્મ રૂપ હો રહે. દોનો કા પરિણમન એક સાથ હો રહા હૈ, એસા નહીં કે જીવને પહેલે પરિણામ કિયે બાદ મેં કર્મ કર્મ રૂપ હુએ. એસા હોગા તો કભી કોઈ સોચે, લેકિન હૈ દોનો કા એક હી કાલ. ફિર ભી જિસ કાલ મેં ઇસ જીવને રાગાદી પરિણામ કિયે ઉસી કાલ મેં વો કર્મ બંધે ઓર વ કર્મ ભી ઉસ જીવ કે ક્ષેત્ર યાને જીવ જિસ ક્ષેત્ર મેં આકાશ કે ઉસી પ્રદેશ મેં આકે વો કર્મ રહે તો ઉનકે નિમિત્ત સે હુઆ. તો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ બતાને કે લિયે વહાં વો બાત બતાઈ હૈ. ક્યા કહે રહે? દેખો ફિર સે પહેલી લાઈન, એ કર્મયોગ્ય પરમાણુઓની કર્મ ભાવે પરિણમવાની જે તે સમય યોગ્યતા અને જન્મ ક્ષણ છે તેથી સ્વયં જ્ઞાનાવરણાદી કર્મ ભાવે પરિણમે છે. એ પુદ્ગલ સ્વયં પરિણમિત હો રહા હૈ, જીવ કે કારણ સે પરિણમા હૈ એસી બાત નહીં હૈ અને ત્યારે રાગાદી ભાવ છે તે તેમાં નિમિત્ત છે. રાગાદીથી જ્ઞાનાવરણાદી કર્મ બંધાય છે એમ કહેવું એ તો નિમિત્તનું કથન છે. આ પ્રમાણે વસ્તુ સ્વરૂપ જેમ છે તેમ યથાર્થ સમજવું જોઈએ. આત્મા ત્રિકાળ એકરૂપ ચૈતન્ય સ્વભાવમય ભગવાન છે તે શું કરે? અભી ક્યાં સમજા રહે? આત્મા કા સ્વભાવ કેસા હૈ? ચૈતન્ય સ્વભાવમય હૈ. ચૈતન્ય સ્વભાવ જો હૈ વો ક્યા કરેગા? ચેતના રૂપ પરિણમેગા યા રાગ રૂપ પરિણમેગા? એસા પૂછ રહે. ક્યા કહે રહે? આત્મા કભી આજ અભી વર્તમાન મેં નહીં, त्रिकाल और एक रूप यानी चैतन्य स्वभाव से कोई जुदा रूप से परिणमे ऐसा नहीं, एक रूप चैतन्य स्वभाव में भगवान छे ते शू करे, शू ते रागादि विकार करे, शू ते ज्ञानावरणादि कर्म करे, यानी यह बताए कि वो राग भी राग रूप भी नहीं परिणमा रहा है और ज्ञानावरणादि कर्म को भी उस रूप परिणमा नहीं रहा है कर्म रूप। आहा, ज्ञानानंद स्वरूपी सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा रागादि विकार करे के ज्ञानावरणादि जड़ कर्म करे ये बात झूठी छे, यानी ऐसा मानना बिल्कुल सरासर गलत है। मात्र जाणवू 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 एज जेनो स्वभाव छे ते रागादि परने जाने ये तो ठीक छे, पण ते रागादि परने करे ये मान्यता विपरीत छे, अज्ञान छे। ऊपर लिखा ना पहले लाइन में कि आत्मा त्रिकाल एक रूप चैतन्य स्वभाव में छे, वही बात यहां कहते हैं कि जाणवू 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 ए जेनो स्वभाव छे। अभी अधिक से अधिक क्या होगा, अपने स्वरूप में एकाग्र नहीं होगा तब पर नहीं जाने छे। अब जब छद्मस्त है तब तो वह स्व में अधिक सर लीनता करेगा, उस समय पर भी जानने में जा रहा है लेकिन उधर उसका उपयोग नहीं है। तो कहते हैं ते रागादि पर ने जाने ये तो ठीक छे, पण ते रागादि ने एटले पर ने करे ए मान्यता विपरीत छे। भाई आ दयादान आदि जे भाव थाय तेनो हूँ करता अने दयादान आदि भाव ते मारू कर्म तथा ते समय जे पुण्य कर्म बंधाय ते पन मारू कर्म एनी मान्यता ते एवी मान्यता ते अज्ञान छे। आ कर्ता कर्म विभाव ने अज्ञान ने मेटी ने जे ज्ञाता भावे एक न्यायिकना लक्ष्य परिणमे ते कर्मनो नाश करी शिवमा वसे छे। ये काय का ट्रांसलेशन कर रहे मालूम है, ये सेकंड लाइन जो है ना यहाँ कर्म नाशी शिवमा वसे नमु तेह मद खोय, ये क्या कह रहे हैं, ये शिव में बसने का यानी मोक्ष में पधारने का या मोक्ष की प्राप्ति करने का उपाय क्या है कि यह जो कर्ता कर्म रूप जो विभाव हो रहा है इस जीव के वह जो अज्ञान है उसको मेट कर यानी उसको नष्ट करके उसको मिटा के, लेकिन वो कैसा मिटे कि जे ज्ञाता भावे एक न्यायिक न लक्ष्य परिणमे यानी मैं ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा अपने ज्ञाता स्वभाव को जानकर उस ज्ञायक में ही केंद्रित हो जाए उसी में एकाग्र हो जाए और उस रूपन्न में तो कर्म का नाश होगा और वह सिद्ध पद प्राप्त करेगा। शिवमा वसे छे एटले कल्याण पद ने एटले सिद्ध पद ने प्राप्त थाय छे। लियो एक और एम कहे के भाव कर्म नो आत्मा नाश करे करे छे ए कथन मात्र छे, ई बात समयसार गाथा 34 मां आवी गईली। अने जड़ द्रव्य ना जड़ कर्म ना नाश नो करता तो आत्मा छे ज नहीं, कारण के द्रव्य कर्म नु अकर्मपणे परिणमन थवू ए तो परमाणुओं कार्य छे आत्मा नहीं। यानी अभी हर हमेशा तुम अलग अलग बोलते हो ऐसा कह रहे, तो एक को रेम कहे ऐसा कहा ना, तो वो तो सारा निमित्त का कथन है। क्या कहें, देखो देखो ये समझा रहे कि थर्ड लाइन एक को रेम कहे ये बात ली ना अभी तक हमने, अभी आगे बढ़ाते हैं। जारे आई कहे छे के मिल गया ऊपर से छठी लाइन है कर्म नाशी शिवमा वसे आ केवू, यानी पहले तो कहते कर्म को आप नाश नहीं कर सकते और यहाँ ये जो हमें गाथा मिली है उसमें कह रहे हैं कि कर्म नाशी शिवमा वसे। भाई आत्मा परमार्थे भाव कर्म द्रव्य कर्म नो नाश करतो नथी, परंतु जहाँ स्वयं शुद्ध एक चिद्रूप न्यायकना लक्ष्य परिणम्यो अने ठर्यो त्या पोते वितराग दशाने पाम्यो तथा रागादि उत्पन्न थया नहीं अने द्रव्य कर्म पण अकर्मपणे परिणम्या तो एटलू देखीने વ્યવહારથી એમ કહેવામાં આવે છે કે એને ભાવકર્મ દ્રવ્યકર્મનો નાશ કર્યો. એ વાત સમજમાં આવી? યાને એ કહે રહે કે યહાં તો આપ તો બતાતે હો કે પરદ્રવ્ય કા પરિણમન જીવ કરી નહીં સકતા હૈ, ઓર વહાં તો શાસ્ત્ર મેં લિખતે હૈ કે ચાર ઘાતિયા કર્મ કો નાશ કરકે અરિહંત પદ કી પ્રાપ્તિ ઉન્હોને કી. એક તો કહે રહે ભાઈ આપ તો પરદ્રવ્ય કા પરિણમન નહીં કર સકતે હો, ના તો તુમ કર્મ બાંધતે હો ઓર ના કે કર્મ કા નાશ કર સકતે હો, તુમ તો બિલકુલ શુદ્ધ સબસે અલગ નિરાલે એસે સ્વતંત્ર દ્રવ્ય હો, પર કા કુછ નહીં કર સકતે. और एक तरफ यहां कह रहे हो कि उन्होंने कर्म का नाश करके सिद्धपद प्राप्त किया, तो ऐसी मतलब विरोधता क्यों है इसमें? तो कहते ऐसा जो कथन है वह व्यवहार से यानी उपचार से किया गया कथन है, ये मूल बात बता रहे हैं. व्यवहार थी एम कहवा में आवे छे कि भाव कर्म द्रव्य कर्म नो नाश करो. नमो अरियंताणम नथी कहता, એટલે કે કર્મરૂપી વૈરીને ભગવાને હણ્યા, પરમાર્થે ભગવાનને જડકર્મને તો હણ્યા નથી, પણ રાગાદી ભાવકર્મને પણ હણ્યા નથી. ક્યાં કહા પરમાર્થે યાને ઇન પર
દેખો દેખો ये तीसरी लाइन में क्या लिखा देखो. एक और एम कहे के भाव कर्म नो आत्मा नाश करे छे, ए कथन मात्र छे, यानी ये व्यवहार कथन है, सचमुच नहीं है. वहां वही बात कह रहे, वहां भी जो ज्ञान को ही प्रत्याख्यान कहा, वहां क्या लिखा है कि ये जो रागा दिए उसको परभाव जानकर त्याग किया, छोड़ दिया, यानी छोड़ना भी त्याग किया, ये भी व्यवहार का कथन है. ऐसे गाथा में ही लिखा है, टीका में ही लिखा है.
देखो यहाँ उस गाथा में ऐसा ही लिखा है. हम बहुत बार ऐसे ये बात अपनी हुई है. देखो हम क्या कहते हैं कि जब निर्जरा होती है, जरा ऑफ द ट्रैक में बोल रहा हूँ, यानी इसी से संदर्भ में है, हम क्या कहते हैं कि इस जीव ने निर्जरा की, यानी वो उसने कर्म जो बांधे थे उस कर्मों की निर्जरा की, नहीं तो क्या होगा? वहां कह रहे कि वो नहीं नहीं उसने क्या किया कि राग द्वेष ही नहीं होने दिए. अब आगे क्या कहते हैं, वास्तव में क्या कर रहा है वो, अपने स्वरूप में एकाग्र हो रहा है तो नए राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, और ये बाह्य में जो कर्म जो है वह अपने आप जा रहे हैं. तो इसमें जीव ने क्या किया वास्तव में, क्या राग द्वेष को नहीं होने दिया? नहीं नहीं, उन्होंने क्या किया, राग द्वेष करना वह उसका स्वभाव ही नहीं है, परंतु पर्याय में जो राग द्वेष हो रहे थे वहां तो क्या हुआ, अपने स्वरूप में एकाग्र हुए, अपने स्वरूप में लीनता की, तो वहां राग द्वेष नहीं हुए ऐसा कहेंगे, या कर्म अधिक प्रमाण में खिर गए. वैसे वहां भी वो ही कहा था 34 नंबर की गाथा में.
देखो यहाँ प्रश्न क्या पूछा, एक बाजू ऐसा कहते हैं ना ही भाव कर्मों को जीव करता है ना द्रव्य कर्मों को, तो करने का सवाल ही नहीं है. और अब यहाँ कह रहे हैं कि कर्म नाशी शिवमा वसे, तो यहाँ कर्म का नाश करता है ऐसा क्यों कहा, ये प्रश्न है. यानी ना इन्हें 34 में कहा था कि भाव कर्म का करता नहीं है, उसका भी ज्ञाता ही है, और उसका नाश किया ऐसा कथन ये व्यवहार मात्र है, खरेखर ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ऐसे वहां कहा था. इसीलिए प्रश्नकार ने पूछा कि ना ही जीव भाव कर्म का करता है और ना ही द्रव्य कर्म का करता है, तो फिर कर्म को नाश करके वो मोक्ष हुआ उसका ऐसा क्यों कहते हो? उसका आगे चल के उन्होंने आके ऐसा प्रश्न पूछा. अब उसके उत्तर में दे रहे आगे भाई ऐसा कहकर, आत्मा परमार्थे भाव कर्म द्रव्य कर्म नो नाश करतो नथी.
परमार्थे यानी इन रियलिटी, हाँ निश्चय से
ख्याल है ना, ये क्या प्रश्न कैसे पूछा हो?
वही तो उन्होंने और एक्सप्लेन किया, नमो अरियंतानम नथी कहता, तो अरि याने शत्रु और इसका हंत याने नाश करना. तो कोई ऐसा देखो पहले मैं लघु सिद्धांत प्रवेशिका सिखाता था ना, तब ऐसी बात उठाता था, अभी तो नहीं, मैं बंद हो गया हूँ उस बारे में, कि ये नमो अर्यंतानम आप कहते हो और यार शत्रु का नाश करने का, शत्रु को मार डालने की ऐसी बात आप करते हो, तो हमने तो सुना था कि जैन दर्शन तो अहिंसा परमो धर्म वाला है, वहाँ अहिंसा की विशेषता है, और यहाँ हिंसा की मारामारी की क्या बात कर रहे हैं? तुमने शत्रु का नाश किया, ये कैसा जैन धर्म? अरे भाई वो शत्रु कौन है? तो ये पर शत्रु कोई नहीं है, यहाँ शत्रु जो है वह तो तेरे में उठने वाले जो कषाय परिणाम है, राग द्वेष के परिणाम है, उनको यहाँ शत्रु कहा है, और उनका भी वह नाश नहीं कर सकता है, ये अभी की बात है कि वह तो स्वरूप में एकाग्रता हो जाए तो वहां वो पैदा होना ही बंद हो जाएंगे, तो उनका नाश हो गया, उत्पत्ति नहीं होना यही उनका नाश है, तो वही बात यहां पर समझा रहे। क्या कहा देखो चलो, अभी ये नीचे से चौथी पांचवी लाइन है, देखो ये नमो अरिंतानम नतिकेता एटले के कर्म रूपी वैरी ने भगवाने हान्या परमार्थे, भगवाने जड़ कर्म ने तो हन्या नथी पन रागादी भाव कर्म ने पन हन्या नथी, भगवान तो स्वरूपस्थ छे एटले स्व के स्वरूप में ही स्थित है, भगवान तो स्वरूपस्थ थई पूर्ण वितरागता ने अने सर्वज्ञता ने पाम्या त्यारे रागादी भाव कर्म उत्पन्न ज थया नहीं अने द्रव्य कर्म अकर्मपणे परिणमी गया। तेथी भगवाने भाव कर्म द्रव्य कर्म नो नाश कर्यो एम व्यवहार थी कहेवामां आवे छे। आवो वितरागनो मार्ग बहु सूक्ष्म छे भाई, तेने समझवा तत्वदृष्टि केळवी जोईए। आ प्रमाणे शिवपदने प्राप्त परम पवित्र परमात्मा ने मद खोईने एटले के निर्माणता प्रकट करीने अत्यंत पवित्र भावती हूँ नमस्कार करूँ छूँ एम पंडित श्री जयचंद जी मांगलिक करियूँ छे। ये तो अभी पहले दो लाइन की यानी ये जो मांगलिक कई किया था उसका विश्लेषण आया। प्रथम टीकाकार कहे छे के हवे जीव जीवज एक कर्ता कर्मना वेशे प्रवेश करे छे, जेम बे पुरुषो माहु माहे कोई एक स्वांग करी नृत्यना अखाड़ा में प्रवेश करे छे। ये आपको ऐसा मन में प्रश्न उठता होगा कि दो जन मिलकर एक ही का कैसा वेश लेते होंगे, ऐसा मन में प्रश्न उठेगा ना? तो देखो मैंने देखा हुआ है, आपने भी देखा होगा, उसमें क्या बड़ी बात है, कोई हाथी का या घोड़े का ऐसा स्वांग लेके आता है तो आगे का आदमी अलग तरीके से खड़ा रहेगा, पीछे का आदमी अलग तरीके से खड़ा रहेगा, ऊपर से वो ढांचा जो कपड़े का है वो तो घोड़े जैसा होगा और वो चलेंगे भी उसी तरह दोनों ऐसा ऐसा जो जिस तरह से चलते हैं, और अपने को लगता है साक्षात घोड़ा ही सामने खड़ा है लेकिन है तो अंदर दो व्यक्ति। तो यहाँ तो यही भूल कह रहे हैं कि भाई हमारी भूल तो यही हो रही है कि हम कर्ता कौन है और अपना कार्य क्या है यह न मानते हुए मैं करता और यह जो परद्रव्य रूप जो राग द्वेष है वह मेरा कर्म वह मेरा कार्य, यही हमारी भूल हो रही है। इसलिए कहते हैं जेम बे पुरुषो माहो माहे, माहो माहे यानी परस्पर ना, हाँ जी हाँ, कोई एक स्वांग करी नृत्य ना अखाड़ा, ये नृत्य का अखाड़ा का मतलब समझना कि रंगमंच स्टेज प्रवेश करे छे, तेम जीव अजीव बन्ने एक कर्ता कर्मनो स्वांग करी प्रवेश करे छे एम अहीं टीकाकारे अलंकार कर्यो छे। आ समयसार नाटक छे ने, जीव अजीव छे तो बन्ने भिन्न भिन्न परंतु बन्ने जाने एक होए तेम कर्ता कर्मनो स्वांग रचीने प्रवेश करे छे। कर्ता कर्मनो स्वांग एटले हूँ आत्मा करता अने आ रागादि भाव ते मारू कर्म, कर्म एटले क्रिया, कर्म एटले द्रव्य कर्मनी वात नथी, एम स्वांग रचीने प्रवेश करे छे। आ स्वांग झूठो छे કેમ કે આત્મા ચૈતન્ય પ્રકાશનો પુંજ એકલા જ્ઞાનનો રસકંદ પ્રભુ તે દયાદાન આદિ વિકારી પરિણામને કેમ કરે. યાને વો ચૈતન્ય પ્રકાશનો પુંજ યાને જાનક 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 એસા જિસકા સ્વભાવ હૈ, જાનના 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 એસા હી જિસકા સ્વભાવ હૈ, તો વો જો જ્ઞાન પ્રકાશ જો હૈ વો યે અજ્ઞાન રૂપ યા દયાદાન રૂપ વગેરે જો અંધકાર રૂપ જો પરિણામ હૈ ઉસકો વો કૈસા કરેગા, વિકારી પરિણામ ને કેમ કરે. એ તો સર્વને જાણે. હવે સર્વને કિસકો કિસકો લ્યા? બંધને જાણે, ઉદયને જાણે, નિર્જરાને જાણે અને મોક્ષને જાણે એવો જ્ઞાન સ્વરૂપી ભગવાન છે. જો સમયસાર ગાથા 320 આગે આવેગી. તથાપી હું કરતા અને રાગાદી અચેતન વિકાર તે મારું કર્મ એમ અજ્ઞાનીને ભાસે છે. ભાસે છે અને એવી રીતે જાણે છે. ઓ આહા, હું અખંડ એક ન્યાયક સ્વભાવી આત્મા છું એવો જે વિકલ્પ ઉઠે તેનો કરતા અજ્ઞાની થાય છે. ક્યાં કહા? દેખો જરા ચક્કર આ જાવે એસી બાત હૈ. ક્યાં કહે રહે? યહાં યે કહે રહે કે હું અખંડ એક ન્યાયક સ્વભાવી આત્મા છું. યે ક્યાં હૈ? આત્માનુભવ હો ગયા ના બેન? હા, એ આત્માના અનુભવ નહીં હો ગયા? ક્યાં કહે રહે થે કે હું અખંડ એક ન્યાયક સ્વભાવી આત્મા છું? તો ઉસકો આત્માનુભવ હો ગયા કે નહીં? ક્યાં બોલો બોલો, ક્યું નહીં? જૈસા સ્વભાવ હૈ, જૈસા સ્વરૂપ હૈ, એસા તો ઉસ જીવને હા જાના. ફિર હા, આપ બતા રહી થી યે વિકલ્પ અવસ્થા હૈ. તો હમે જો આજ્ઞા દી જતી હૈ, મેં એક હું, મેં જ્ઞાયક હું, મેં શુદ્ધ હું, મેં બુદ્ધ હું, હો ગયા આત્મા? આ ગયા હાથ મેં, ખ્યાલ મેં આયા મેં ક્યાં કહેના ચાહતા હું? ઇસલિયે મેને આપકો હી બતાયા. દેખો ક્યાં લિખા, દેખો ફિર સે હમ પઢતા હું. મેને બોલા ના યે જરા ચક્કર આને વાલી બાત હૈ. ક્યાં કહા? દેખો 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 દેખો, હું અખંડ એક ન્યાયક સ્વભાવી આત્મા છું એવો જે વિકલ્પ ઉઠે તેનો કરતા અજ્ઞાની થાય છે, જ્ઞાની નહીં. ક્યાં કહે રહે? યે વિકલ્પાત્મક ભૂમિકા મેં નિર્વિકલ્પ હો ગયા એસી બહુત બડી ભૂલ હૈ, ઓર ઉસી કો ધ્યાન કરકે સમજ રહે લોગ.
તો એસા વિકલ્પ જ્ઞાની કો આયેગા કે નહીં આયેગા? યહાં ક્યાં કહા? એસા જો અજ્ઞાની હૈ તો જ્ઞાની કો એસા વિકલ્પ આયેગા કે નહીં આયેગા? બોલો. હા તો હા, વો વિકલ્પ કા વિકલ્પ હૈ ને રાગ, ઉસકા વો કરતા નહીં હોતા હૈ. આને વાલે કો જાનતા જરૂર હૈ કે અપને મેં એસે વિકલ્પ હો રહે, પરંતુ જબ તક વિકલ્પ હૈ તબ તક ઉસકો અનુભવ નહીં માનતા હૈ. વો રાગ ઉસકો રાગ કો રાગ જાનતા હૈ, ખ્યાલે ને? જબ વો રાગ છૂટકર અપને મેં લીન હો જાયેગા, યે તો ઉસકા જ્ઞાતા હૈ, ઓર અજ્ઞાની ઉસકા કરતા હોતા હૈ. ઓર આપને અભી જો ખાસ આપકા ધ્યાન ઇસલી યહાં કિયા કે ધ્યાન કે ક્લાસ લગતે હૈ, મેં એસા હું વૈસા હું, એક જન બોલે ઓર બાકી અપના અપના ધ્યાન કરે, તો ધ્યાન કિસકા હો ગયા? અકેલે વિકલ્પ નહીં, યે તો ઇન્દ્રિય જ્ઞાન ચલ રહા હૈ. કોઈ પર કા પર બોલતા હૈ, શ્રોત્રેન્દ્રિય કે દ્વારા હમ સુન રહે હૈ, ઓર ફિર ઉસ પર વિચાર ચલ રહા હૈ. યે સારી રાગ કી ભૂમિકા હૈ, ઓર ઉસી કો હમ ધ્યાન માન લેતે હૈ. વૈસી કિસી કી ભૂલ ન હોય ઇસલિયે યે બાત યહાં ઉઠાઈ. અબ ભલે દૂસરા નહીં કહે પર હમ મન હી મન મેં જો પહેલે વિકલ્પાત્મક ભૂમિકા હોતી હૈ, નહીં હોતી ઉસકી બાત નહીં, પરંતુ વો રાગ હૈ યે સ્વીકાર પહેલે હોના ચાહિએ. એસે જ્ઞાન જબ હોગા, રાગ સે ભિન્ન અપને આપ કો જાનેગા, વહાં ભી રાગ કા કોઈ કામ નહીં હૈ. જબ અપને આપ કો જાનેગા ઉસમે રાગ ઉસકો ખ્યાલ મેં નહીં આયેગા, ક્યોંકિ ઉસકા લક્ષ્ય તો પહેલે જ છૂટ ગયા ઉસકા. ઇસલિયે જબ તક વિકલ્પ હૈ તબ તક રાગ હૈ, ઓર અજ્ઞાની સ્વયં ઉસકા કરતા હોના ચાહતા હૈ. જબ તક અજ્ઞાન હૈ તબ તક ક્યા માનતા હૈ? મેં એસે વિકલ્પ ઉઠા હું તો મુજે આત્માનુભવ હો જાયેગા. ક્યા કહેતા હૈ? વિકલ્પ આના ઉસકા નિષેધ નહીં હૈ, परंतु आत्मानुभव होने के लिए क्या करना चाहता है, विकल्प उठाना चाहता है, बार 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 उसी विकल्पों में घूमता। तो ये सेंटर है और उसके परिघ में घूम रहा है, तो सेंटर पर कब पहुंचेगा? तो ये जब निर्विकल्प हो जाएगा, परंतु अपने पहले में पहले ये स्वीकार होना चाहिए कि ये विकल्प भी राग है और राग से वितराग नहीं हुआ जाता। तो विकल्पात्मक भूमिका, तो जब तक अभी आत्मा का निर्णय नहीं हुआ है तब तक तो विकल्प उठेंगे, निर्णय हुआ तब कहेंगे अभी विकल्पों का क्या काम है ना, जानने का कार्य है विवाह। तो इसलिए ये अज्ञानी उसका कर्ता होता है, उसकी बात यहाँ उठाई मुख्य। आप पढ़ेंगे?
देखो अभी आपसे पूछा गया था क्या ज्ञानी ऐसा विचार करेगा क्या नहीं, तो पहले तो अपने को लगता है नहीं नहीं ये तो अज्ञानी करे। अरे ज्ञानी भी करेगा, लेकिन वह जो विकल्प चल रहे उसको आत्मानुभूति नहीं मानेगा वो, क्योंकि वो भी जानेगा ज्ञानी है ना। तो देखो एक दफे तो आत्मा का अनुभव हो गया तो ज्ञानी हो गया, तो अभी बार बार उसको आपे अपने स्वरूप में जाना है तो वह तो ऐसा ही मन में तो यही सोचेगा, विकल्प तो आएंगे वैसे, और विकल्प को छोड़कर निर्विकल्प होगा। यानी अभी जैसा कहा कि परिघ में ही घूमेगा तो उसको सेंटर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये परिघ में जो विकल्प चल रहे हैं उस विकल्प को तोड़कर बीच में से घुस सेंटर में जाएगा यानी निर्विकल्प होगा, तो उसके हाथ में आत्मा आएगा। उन्होंने आधा ही छोड़ दिया, उसको मैंने पूरा कर दिया। यानी यहाँ विकल्प पहले भूमिका में होंगे, लेकिन वो विकल्प में संतुष्ट हो जाए और हमारे तो बधु पति गयो आत्मा आवी गयो। मैं सच कहता हूँ भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सामने जिनवानी है। हम एक गांव गए थे, नाम भी बोल दूं क्या, शोलापुर में। वहां तो आधे से ऊपर लोग तो स्वयं को सम्यक दृष्टि ही समझते हैं, क्योंकि वहां ये ध्यान की क्लास चलते हैं, ख्याल में ये है, बात नहीं है। कितनी क्लियर कट बात में देखो क्या कह रहे हैं, हूं अखंड एक। अब ये किसके बारे में कह रहे हैं, हूं के बारे में कह रहे हैं, तो मैं कैसा हूं, अखंड हूं, मैं कैसा हूं, एक हूं, मैं कैसा हूं, ज्ञान स्वभावी हूं और मैं आत्मा हूं, ऐसे ये विकल्प हुए कि नहीं। एक ही वस्तु के भेदात्मक बात चल रही ना, तो अभेद आत्मा का कहां वह ये है, ख्याल में है। फिर भी मैं कहता हूं कि आत्मा का अनुभव होने के पहले ऐसे परिणाम आएंगे, पर उसी को आत्मानुभवी या आत्मानुभूति मानना नहीं, क्योंकि ये विकल्पात्मक है। इसलिए कह रहे देखो देखो ये किसकी बात कर रहे हैं, हूं अखंड एक न्यायिक स्वभावी आत्मा छू एवो जे विकल्प उठे तेनो कर्ता अज्ञानी थाय छे। तो पहले तो आत्मानुभव होने के पहले सभी अज्ञानी है, पर उसका कर्ता, ये कर्ता कब पना कब छोड़ेगा, कि जब स्वयं का आत्मानुभव होगा और उसको लगेगा कि मैं तो निर्विकल्प अवस्था में वो मैंने अनुभव किया है, तो बार बार उसको विकल्प भले आवे पर वो कर्ता नहीं होवे, उठने वाले परिणामों का वो ज्ञाता ही रहेगा। ज्ञानी नहीं, दोनों बाजू से अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों बातें बताएं, अस्ति नास्ति से दोनों का कथन कर दिया। शुभाशुभ बनने भावनो अज्ञानी करता थाय छे, ज्ञानी नहीं। अभी यह क्या कह रहे, देखो देखो, अभी दयादान व्रत भक्ति पूजा यात्रा आदि करना ये तो शुभ भाव है ही है, उसमें कोई दुमत नहीं है, पर ये आत्मा के बारे में हम ऐसे विकल्प उठा रहे हैं वे भी शुभ भाव है, वो कोई शुद्धोपयोग नहीं है, निर्विकल्प अवस्था नहीं है। तो कह रहे हैं कि शुभाशुभ, शुभ और अशुभ दोनों बनने भावनो अज्ञानी करता थाय छे, ज्ञानी नहीं। हवे प्रथम ते स्वांग ने ज्ञान यथार्थ जानी ले छे, तेथी ते ज्ञान ना महिमानु काव्य कहे छे, ते स्वांग ने ज्ञान यथार्थ जानी ले छे, एटले जे समय अवस्था मा राग छे ते समय ज्ञानी पर्याय स्वने स्वपने अने रागने परपने जानवा रूपेज प्रकट थाय छे। आहा, रागनो करता तो जीव नथी, अभी और एक नया गुगली है समझना। राग नो करता तो जीव नथी, पन राग छे माटे राग संबंधी ज्ञान थयू छे एम पन नथी। ये बात समझ में आई मिली? मैंने तो पहले सावचेत किया था आपको, भाई ध्यान देना। हाँ हाँ, देखो ज्ञान इतना पराविलंबी नहीं है कि सामने वस्तु हाजिर हो तो ही मुझे ज्ञान होगा। ख्याल में कहा आया? देखो कितनी बढ़िया बात बताते हैं, क्या समझाए देखो, कि राग नो करता तो जीव नथी। ये तो निश्चित हो गया, क्योंकि राग का कर्ता हो जाए तो उसको निरंतर राग ही करना पड़े, क्योंकि वो तो पर्याय हो गई ना, मतलब किसकी स्वभाव रूप पर्याय हो गई, कर्ता हो गया ना वो उसका। तो कहेंगे फिर राग वो जो विभाव भाव हो रहा है तो उसका भी तो वो करता है कि नहीं, वो नहीं है ये तो बात समझा रहे। तो फिर वहां राग तो हो रहा है ना, हाँ हो रहा है, लेकिन वो पर्यायगत योग्यता के कारण से हो रहा है, क्योंकि जीव में ऐसा एक भी गुण नहीं है, धर्म नहीं है, शक्ति नहीं है कि जो राग करावे। और ये बार बार राग जो होता है वो परद्रव्यों के तरफ इसका ध्यान जाता है, इसलिए इस राग को पुद्गल का कह दिया आप, ख्याल में है ना। तो यहां क्या समझा रहे हैं, राग नो करता तो जीव न थी, एक बात। अब दूसरी बात, पन राग छे माटे राग संबंधित ज्ञान थयूं छे एम पन न थी। ये राग भी तो पर पदार्थ है, और पर पदार्थ से मुझे ज्ञान हो जाए तो मेरा ज्ञान कितना हाँ बिल्कुल फालतू हो गया, दूसरे के सामने जाके झुकना पड़े उसको, अरे मुझे ज्ञान होने दो, मुझे ज्ञान होने दो, ऐसा नहीं है। यहाँ बैठे बैठे तीन लोग का ज्ञान हो जाए, ऐसे ज्ञान का धनी मैं हूँ कि जिसके पर की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, निमित्त की कोई गरज नहीं है, क्योंकि स्वभाव कभी निमित्त से नहीं होता, ज्ञान तो उसका स्वभाव है ना, और स्वभाव कभी अपूर्ण नहीं रहता, परिपूर्ण रहता है। ख्याल में तो क्या कह रहे देखो, माटे राग संबंधी ज्ञान थयू छे एम पन नथी। राग नु ज्ञान ए तो कथन मात्र छे, ज्ञान नु ज्ञान छे। अरे बाप रे, इससे भी और बात। क्या कह रहे हैं देखो, मैंने पर पदार्थ को जाना, ये तो एक द्रव्य ने दूसरे को जाना, ये तो व्यवहार हो गया। अभी यहां कह रहे कि मैंने राग को जाना, तो इसमें भी भेद हो गया, तो वह भी व्यवहार है। तो यहां कहते कि फिर जाना तो सही ना, तो किसको जाना एक्चुअली, कि उस समय की पर्याय को पर्याय ने जाना, क्योंकि ज्ञान जो है वह स्व पर प्रकाशक है, तो पर्याय पर्याय को ही जान रहे, ज्ञान ज्ञान को ही जान रहे। देखो क्या कह रहे, देखो नीचे से तीसरे लेन, राग नु ज्ञान ए तो कथन मात्र छे, कथन मात्र छे अने व्यवहार कथन छे, केवा पूरतु छे। अरे ज्ञान नु ज्ञान छे अने ते ज्ञान आत्मा नु कर्म छे, यानी वो जानने का कार्य भी आत्मा का ही है, आत्मा करता है और ज्ञान उसका कर्म है। राग आत्मा नु कर्म नथी अने ज्ञान राग नु कर्म नथी। क्या बात, आहा, आम स्वांग ने यथार्थ जाननारू ज्ञान ते ज्ञान ना महिमा नु कलश रूप काव्य कहे छे। आ कर्ता कर्म अधिकार नो पहलो कलश छे। शू कहे छे मा के इह, इतले आ लोक मा, ये इह शब्द कभी आपने सुने? हाँ हाँ, कई इह लोक का भय, वो यह वही अर्थ किया है। हाँ, इस लोक का भय, परलोक का भय वगैरह हमने देखा था ना। तो इह एटले आलोक मा, अहम चिद एटले हूँ चैतन्य स्वरूप आत्मा, तो एक हा करता, एक करता छू, अने अमी कोपादय। ये अ बराबर आया क्या देख लेना, आ क्रोधादि भावो मे कर्म, मारा कर्म छे, इति अज्ञानाम कर्तु कर्म प्रवृत्तिम, एवी अज्ञानियोनी जे कर्ता कर्मनी प्रवृत्ति छे, तेने शू कहूँ, અજ્ઞાની એમ માને છે કે હું કરતા અને આ ક્રોધાદી મારા કર્મ છે. કર્મ એટલે મારે ક્રિયા, જો કરતા કર્મ બોલતે ને, મતલબ આપણે ગણિત આપણા વ્યાકરણ મેં વો કર્મ. ક્રોધાદી કહ્યા એમાં પ્રથમ ક્રોધ કેમ લીધો? કારણ કે મુનિરાજ છે તે ક્રોધના અભાવપૂર્વક ઉત્તમ ક્ષમાના ભંડાર છે. આહાહા, મુનિરાજ તો ચૈતન્ય સ્વભાવમાં ભગવાન આત્માની રુચિ અને રમણતાના સ્વામી છે. ભાઈ, આત્મા શુદ્ધ ચિદાનંદમય અખંડ એક રૂપ વસ્તુ છે. તેનો જેને પ્રેમ નથી, રુચિ નથી, તેને પોતાના આત્મા પ્રતિ ક્રોધ છે. દ્વેષ અરોચક ભાવ, ઉસ ક્રોધ કો ક્યા કહના, દૂસરા નામ ક્યાં દિયા, યે દ્વેષ સહિત કૈસા અરોચક ભાવ. સ્વભાવની અરુચિ એટલે અણગમો, તે અનંતાનુબંધી ક્રોધ છે. પુણ્ય પાપના ભાવો અને દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ઇત્યાદિ પરપદાર્થોની રુચિ અને સ્વસ્વરૂપની અરુચિ, તે આત્મા પ્રત્યેનો દ્વેષ છે. ક્યા બાત હૈ, કિતની કિતની બાતો લી દેખો. સ્વામીજી એકદમ ફોર્મ મેં ક્યા કહે રહે, પુણ્ય પાપના ભાવો એક, દેવગુરુ શાસ્ત્ર ઇત્યાદિ પરપદાર્થોની રુચિ. કિસકી રુચિ? એ ખાને પીને કી, પાંચ ઇન્દ્રિય કી, વિષયો કી નહીં લી, ક્યા લ્યા યહાં, કે દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ ઇત્યાદિ પરપદાર્થોની રુચિ. દેખો એક એક ઝટકે લગ જાય. અને સ્વસ્વરૂપની રુચિ, તીન વાતે બતા દી, અરુચિ અરુચિ સોરી. તે આત્મા પ્રત્યેનો દ્વેષ છે અને તે અનંતાનુબંધી ક્રોધ છે. તો અભી આપણ કહાં ઇસમે ફિટ હોતે દેખ લેના ભાઈ, અપના અપના હો, બોલના મત. તેવી રીતે પુણ્ય પાપ આદિ પરપદાર્થોમાં અહમ બુદ્ધિ થવી એ અનંતાનુબંધી માન છે. અભી દેખો યહાં ક્રોધ માન માયા લોક કી બહોત અચ્છી ડેફિનેશન્સ દી હૈ. ક્યા કહે રહે દેખો, હા અનંત અનુબંધ, પુણ્ય પાપ આદિ પરપદાર્થોમાં. એ પરપદાર્થ કિસકો કહા? પુણ્ય પાપ આદિ પરિણામો કો, શુભ અશુભ પરિણામો કો, હા ઇનકો પરપદાર્થ કહા? યાને યહાં શરીર કી બાત નહીં કીએ અરવિંદભાઈ, પુણ્ય પાપ આદિ ભાવ કી કીએ. તો ક્યાં કહા? પુણ્ય પાપ આદિ પરપદાર્થોમાં અહમ બુદ્ધિ થવી એ અનંતાનુબંધી માન છે. ઉપર તો દ્વેષ કી બાત બતા દી થી. પુણ્ય પાપ આદિ પરપદાર્થોના પ્રેમની આડમાં ચૈતન્ય સ્વભાવમાં નિજાત્માનો ઇનકાર કરવો તે અનંતાનુબંધી માયા છે. તથા સ્વભાવને ભૂલીને પુણ્ય પાપ આદિ પરપદાર્થોની અભિલાષા એટલે વાંછા કરવી તે અનંતાનુબંધી લોભ છે. યે દેખો યહાં તો મૂળ બાત તો ઇસ તરહ સે ઘટિત કી હૈ કે આપણે સ્વસ્વરૂપ કે પ્રતિ અસાવધાની ઉસકો તીનો ચારો કચાયો મેં બાંટ દિયા. અભી હમ આગે કી બાત કર લેંગે.
જાવાણી કે જ્ઞાન સે સૂજે લો કાલો, સોવાણી મસ્ત કર્ણમો સદા દેત હો.
તેજલ બોલો.